श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रयम् यः साक्षाद् गुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये रम्यके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गीता जी के 12वां श्लोक निकाले, 9वां अध्याय के। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी माशुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। महात्मनास्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः। भजन्तनन्यमनशो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता। नमस्यस्तंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातस्मरणीय कैलाश पीठाधीश्वर ब्रह्म विद्या के पंचम पीठाधीश्वर पूज्य बड़े महाराज जी, इन्हीं के चरणों में वंदन। और साक्षात कृष्ण स्वरूप सुखदेव स्वरूप पूज्य महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन। और आप सभी भक्तिमती माताएं भक्तजन, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण इस बात का निरूपण करते हैं कि जो ब्रह्म विद्या है सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थोर्वश्च सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। कल का कार्यक्रम भी बड़ा दिव्य रहा, बड़ा अच्छा रहा। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज जी बड़े गंभीर भाव से, और अपने स्वामी जी भी जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, ये भी बड़े अद्भुत भाव से कल कहा, बड़ा अच्छा लगा। ये जब मंडलेश्वर बने थे ना तो बनारस आए, उस समय मैं छात्र संघ के अध्यक्ष था, उस समय मैं आचार्य में या किसी में था, आचार्य के अंतिम वर्ष में था या पहले वर्ष में था, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में आचार्य के अंतिम वर्ष में था शायद या पहले था। तो इन्होंने कहा कि बुलाओ, तो हम लोग गए, हम भी गए। स्वामी अवधेशानंद जी उस समय मंडलेश्वर नए नए बने थे, और नए नए मंडलेश्वर बने थे, महाराज जी को तो कुछ पता ऐसे ज्यादा था नहीं क्या होता है कैसे। तो बोले कि यहां के विद्वानों को बुलाना है काशी जी के। तो मैंने इनको पूछा अवधेशानंद जी को कि महाराज जी आप नए नए अभी बने हैं, आपकी अहोभाग्य है कि भगवान विश्वनाथ जी में आप आए हैं, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, पूछूं? तो इन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में ऐसे एक विषय आया है कि भागवत महापुराण 18,000 श्लोक की संख्या में है। भागवत महापुराण जिनके रचयिता भगवान वेदव्यास जी हैं और वक्ता के रूप में सुखदेव और परीक्षित हैं, कृष्ण और उद्धव जी हैं, नवविप्र और निमि राजा है, जिनके बहुत से वक्ता हैं भागवत जी में, छह वक्ता। और ये भागवत के जो विषय है तो प्रवक्ता के रूप में मुख्य रूप से वेद व्यास पुत्र सुखदेव जी हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। भगवान वेद व्यास जी दौड़ा रहे हैं और सुखदेव जी जा रहे हैं, और इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं कि पुत्रेति तन्मयतया। सुखदेव जी जो है ना ब्रह्मीभूत में है, तो ये तन्मयतया उस परमात्मा में तन्मय है। जब देखा कि पिताजी दौड़ा रहे हैं और पुत्र जा रहे हैं, और पिता पुत्र का कोई संवाद नहीं है, वेदव्यास जी दुखी हैं, रो रहे हैं, तो कहते हैं तरवो अभिनेदु। सामने जो वृक्ष थे ना, वो वृक्ष चेतन के रूप में आए और बोले कि देखो आपका ये पुत्र साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म जब हो जाता है तो पिता पुत्र परिच्छेद भाव नहीं होता। सुखदेव जी आवाल ब्रह्मचारी हैं, और देवी भागवत के सुखदेव के छह बच्चे हैं। श्रीमद् देवी भागवत को बनाने वाला भी भगवान वेदव्यास जी है, जिनकी श्लोक संख्या 24,000 है, 24। और ये भागवत जो है ना श्रीमद् भागवत 18,000 है, और उनके घर में लड़के बच्चे हुए, पत्नी है, बच्चे हैं सुखदेव जी का, और ये है। ये दोनों में समझ में नहीं आता ये क्या है, आप बताइए थोड़ा। ये स्वामी जी को मैंने पूछा, अवधेशानंद जी को, तो वो मुझे देखे, बोले कि आप किस कक्षा में हैं? तो मैं कहा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा छात्र हैं, जानना चाहते हैं। तो महाराज जी ने अच्छी समझाया, बहुत लोग थे, खूब अच्छा बढ़िया समझाया। कहा कि कल्प भेद के अनुसार जो है ना भगवान की चरित्र का विषय है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, जैसे कल्प भेद है, कोई रोचक है, कोई प्रेरक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना इनकी कृपा है, इनकी माता पिता जी का। ये आगरा की तरफ जो है ना एक अच्छे ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ है, स्वामी अवधेशानंद जी का। तो इनके माता पिता की बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है। तो ये कृपा होने से क्या है कि इनके बाड़ी में सरस्वती का निवास, स्वामी जी का, इसलिए ये जो बोलते हैं ना वो वाणी में इतना मिठास है, और इसलिए मिठास है कि इतना बड़े होने पर भी अहंकार भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, निरहंकार भाव है। जितने भी अखाड़े हैं, सारे अखाड़े में निर्वाणी अखाड़ा, हम जहां रहते हैं गोविंद मठ में, वो निर्वाणी अखाड़ा है। निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी पुण्यानंद जी महाराज, और ये जो जूना अखाड़ा है ना, जूना अखाड़ा में यदि आप भंडारा करेंगे तो मिनिमम समझें कि 10 लाख साधु जो है ना रहेगा, और 10-10 रुपया देंगे तो आपका घर खाली हो जाएगा। इतना बड़ा अखाड़ा है ये। और उस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर होना अपने आप में बहुत ये उपलब्धि है। इसलिए स्वामी जी से मैंने पूछा तो बड़े अद्भुत कल विषय था, आप सभी के सहयोग से, अपने गिरीश भाई थी, माता जी थी, झुंझुन वाले थे, प्रकाश भाई था, सब लोग के सहयोग से बड़ा अच्छा रहा, दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। तो देखो गीता जी में भगवान ने इस बात को निरूपण करते हैं कि ब्रह्म विद्या उपनिषद जो विद्या है, उप माने समीप, नी माने निरंतर, और सद का अर्थ होता है विसरण, गति, अवसादन। इसलिए तीनों शब्दों को लेकर के उपनिषद शब्द बनता है। उप माने समीपस्थ, नी माने निरंतर, सद का अर्थ होता है विसरण, गति, अवसादन। पानी बहुत गर्म हो गया है तो उसको आपने ठंडा किया, इसको कहते हैं शिथिलीकरण। पानी बहुत गर्म, शरीर में घाव हो गया है, खुजली हो गए है, उसको जो है ना धीरे धीरे जो है ना मिटाया, इसको बोलते हैं विसरण। और एक होता है गति, गति का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। और अवसादन का अर्थ होता है इच्छा का अभाव, कोई भी इच्छा नहीं। आपके पास तीन इच्छा है, लोकेशण, पुत्रेशण और वित्तेशण। इसलिए वेदांत में और विशेष करके मीमांसा दर्शन में, उत्तर मीमांसा में, जहां ऋषि जैमिनी उसके मुख्य वक्ता है, तो उन्होंने थोड़ा जो है ना क्रम जो है ना अलग कर दिया। पहले एक लिखा जाता है, दो लिखा जाता है, तीन लिखा जाता है, चार लिखा जाता है, ऐसे क्रम जो होना चाहिए। लेकिन वेद की व्यवस्था में एक क्रम जो है ना विपरीत हो गया। पहले सतयुग आया, सतयुग में चार चरण होते हैं, धर्म, ज्ञान, यज्ञ, तपस्या। त्रेता युग तीन चरण होते हैं, द्वापर में दो चरण होते हैं और कलियुग में एक चरण होता है। कलियुग में दान और सत्संग है, एक चरण ये बचा है। इसलिए महाराज परीक्षित जी ने जब कलियुग को देखा तो उसने कहा कि रहने के लिए, तो कलियुग को देख करके परीक्षित जी ने कहा रहने का चार जगह है। एक है वैश्यावृत्ति व्यभिचार, एक है जुआ खेल, एक है चोरी करना और एक है मदपान। अभ्यर्थितम तदा तस्मै, भागवत जी में आया है कि राजा परीक्षित जी ने कलियुग को रहने के लिए चार जगह बताए। जहां व्यभिचार वृत्ति होगा वहां पर हिंसा होगा, इसलिए हिंसा जहां होता है ना वहां पर कलियुग का निवास। जहां पर चोरी वृत्ति होगा वहां असत्य भाषण होगा, मिथ्या भाषण को लेकर के चौर्य कर्म में कलियुग का निवास। जहां पर दया नहीं होगा, निर्दय भाव होगा, वो निर्दय भाव कहां होता है तो शास्त्रों में कहा जहां हिंसा वृत्ति होते हैं, पशु का वध होता है, वहां पर निर्दय भाव होगा। और जहां पर नशापान होगा, मदपान होगा, वहां पर नाना प्रकार के जो है दया धर्म का अभाव हो जाएगा। इसलिए कलियुग को जो है ना चार जगह रहने का स्थान बताया। इसलिए पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग ऐसे है, लेकिन कलियुग को पहले लिखना चाहिए था। दो नंबर पर द्वापर युग है, तीन नंबर पर त्रेता युग है और चार अंक में सतयुग है। यहां पर भी पुरुषार्थ में जो है ना ऐसे क्रम है, पहला धन है, दूसरे नंबर पर काम है, तीसरे नंबर पर धर्म है और चौथे नंबर पर मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये परंपरा नहीं है, लेकिन वेद ने ये परंपरा जो दी इसका सीधे सीधे अर्थ ये है कि धन नहीं होगा तो धर्म कहां से करेंगे, धना धर्म, धन से धर्म होना चाहिए। तो बोले आप धर्म को क्यों लिखा, पहले धर्म को इसलिए लिखा कि धर्म को लेकर के धन, धर्म को लेकर के इच्छा और धर्म को लेकर के मोक्ष। ये यदि आपके पास धर्म नहीं है तो ये तीनों पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। इसलिए पुरुषे ही अर्थते प्राप्यते गम्यते इति पुरुषार्थ, पुरुष जिसको प्राप्त करना चाहता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उत्तर मीमांसा के ये पूर्व मीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनी जी ने अथा तो धर्म व्याख्या श्याम ये पहले सूत्र का वर्णन किया। वहां पर उसने कहा पहले धर्म चाहिए और धर्म की निरूपण कल स्वामी जी ने किया था, यह तो अभ्युदय निश्रेय सधर्म, जहां मोक्ष की प्राप्ति होता है उसको धर्म कहते हैं। ये मीमांसा दर्शन में ये है। उस धर्म के विषय में शास्त्रों में इस बात को उठाया कि आपके पास जो इच्छा है ना, तीन प्रकार के हैं, जीने की इच्छा, जानने की इच्छा और सुख पाने की इच्छा। आप जीना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजीविष गुंग समाह एवं तो ही नान्यस्ते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा, कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए, स्वाध्याय सत्संग करते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, इसका प्रमाण ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में है। कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजीविष गुंग समाह। जानने की इच्छा, आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना ही मोक्ष है, क्योंकि बंधन हमारे यहां नहीं है वेदांत में कोई, अपने स्वस्वरूप को नहीं जानना ही बंधन का कारण है। रस्सी में सांप नहीं है, तीनों कालों में अत्यंत अभाव है, रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं जानना ही सांप ज्ञान का कारण है। इसलिए ये कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो पहले मंत्र है ना, ये जो विषय है, ये जानने की इच्छा कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत, जितने भी जगत है सब परमात्मा है। इसलिए वो कहते हैं कि इसको आप जाने, तो ये जो पुरुषार्थ है ये धर्म रूपी पुरुषार्थ है। पहले जो मंत्र है ईशावास्य इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इतना तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग का अर्थ है कि ये मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये न बोले, यही सोचे कि सब कुछ परमात्मा का है। ये जो भाव है ये अर्थ पूर्वक जो है ना पुरुषार्थ है। मा गृध कस्य स्वित धनम, ये धन किसी का नहीं है, यानी ये धन किसी का नहीं है ये सिद्ध होता है कि धन केवल परमात्मा का है, दूसरे का नहीं है। ये धन मेरा भी नहीं है, और आपके पास दो धन है, एक देवी संपत्ति है एक आसुरी संपत्ति है, आपको ईश्वर ने दोनों धन दिए है। ये जो है ना काम रूपी पुरुषार्थ है। और दूसरे नंबर पर जो ये मंत्र आया है ना, कुर्वन नेवेह कर्माणि, अध्यात्म विद्या का चिंतन करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, ये जो है ना मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की बात है। इसलिए गीताकार जी ने यहां पर मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसह राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रीदा, यहां ये जो 12वां श्लोक है, मोघ कहते हैं व्यर्थ को। संस्कृत में जो मोह शब्द आया है, मोह विचित्य धातु से मोह शब्द बनता है, उसका जो प्रथमा विभक्ति है उसका अर्थ है मोघ। मोघ माने व्यर्थ, और आशा का मतलब होता है जो अपने जो भाव है, जो इच्छा है, ये आशा है, मोघाशा। अवजानंतिमा मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम, जो अज्ञानी होता है मेरे महिमा को नहीं जानते, मानुषिम तनुमाश्रितम, मुझे मनुष्य मानते हैं। ईश्वर जो है ना मनुष्य नहीं है, क्यों नहीं है? देश काल वस्तु से रहित है। जो देश काल वस्तु से रहित होगा वो व्यापक होगा, वो अखंड होगा, वो असंग होगा। देश काल वस्तु से जो व्यापक है वो जो है ना, वो जो रहित नहीं है, वो जीव है, वो पापी है, वो पुण्यात्मा होगा, वो परिच्छेद भाव को प्राप्त करेगा, उपाधि को लेकर के होगा। और परमेश्वर में देश काल वस्तु में रहने पर भी ईश्वर असंग है। जब वो असंग है तो देश काल वस्तु से रहित है। जैसे घट है, अयम घट है, ये घट आपने कहा तो घट माने क्या? गोल मटोल, कम्बू ग्रीवादी वाला जो होता है ना, वो घड़ा है। व्याकरण वालों ने कहा घट का अर्थ होता है घ अ ट अ, इसको हम घट बोलते हैं। तो एक न्यायिक बैठा था, गौतम के अनुयायी, उसने कहा घट का मतलब होता है कम्बू ग्रीवादी मत्वम घटत्वम, जिसका पेट बड़ा हो और ये गला छोटा हो उसको हम घड़ा बोलते हैं। उसने ये कहा, जिसका पेट बड़ा और जिसमें ये है। तो एक सीधे साधे विद्वान बैठा था, उसने कहा भी घट घट तुम बोलते हो, घ ट ये चार हो गया, कम्बू ग्रीवादि मध्यम घटत्वम, ये घट का मूल कारण क्या है? तो एक जिज्ञासु ने कहा ये घड़ा कहां से बना? बोले मिट्टी से बना। ये जो माटी है ना, ये घड़ा जो है ना, ये इसका जन्म हुआ। घड़ा यदि फूट जाएगा तो इसमें अभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, ये चारों भाव पदार्थ का अभाव हो जाएगा। और उस घड़ा जो है ना मिट्टी बन जाएगा। तो वेदांतियों ने कहा कि वाचारम्भण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, घड़ा के फूट जाने पर माटी ही रहेगा। इस अभाव को कौन जानता है? तो भगवान कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मुझ परमेश्वर को परम भावम अजानन्त, मैं परमेश्वर हूं, सर्वव्यापक हूं, ऐसे मुझे नहीं जानते। द्रौपदी जी ने कहा कन्हैया जी आपको मैंने इतना स्मरण किया, आप कहां थे? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तुमने हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारका वासिन कहा तो मैं द्वारका से चला और आकर के आपके सामने खड़ा था। और दुशासन जब वस्त्र को खींच रहा था तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। तो भगवान को देख करके द्रौपदी ने कहा कि आप प्रकट नहीं हुए, बड़ा देरी हो गया। बोले कि द्रौपदी जी ऐसे है ना, जब तुम अपने वस्त्र को, अपने साड़ी को खींच रही थी, देख बलपूर्वक उसको जब तुम ही खींच रही थी, शरीर को ढक रही थी, तो मैंने कहा कि द्रौपदी जी का जो बल है सब कुछ है, तो मेरे बल की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने जो है ना खड़े होते हुए देखा, लेकिन जब तुम खींचने में असमर्थ हो गई, बचाने में असमर्थ हो गई, तब मुझे प्रकट होना पड़ा। लेकिन द्रौपदी मैं तेरे पास ही था। इसलिए वेदांत उपनिषद में इस बात पर जोर दिया है नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुते न, यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। बहुत प्रवचन करने पर भी परमेश्वर का दर्शन नहीं होता, एक अर्थ ये। प्रवचन का अर्थ होता है शब्दों की जाल, शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बहुत शब्दों की जो झरी है ना, ये प्रवचन है। तो वेदांत का कहना है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन के द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता। प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्ट वाणी। ये जो प्रकृष्ट वाणी है इसको शास्त्रों में प्रवचन कहते हैं। इसलिए गीताकार ने इस मंत्र के ऊपर दो व्याख्या की। एक तो एक व्याख्या ये है कि परम भावम अजानंत, जो ब्रह्म है वो परम है। परम का अर्थ होता है परमेश्वर है। परम का अर्थ गीता जी के तीसरे अध्याय या दूसरे अध्याय पर आया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महतत्व, महतत्व से परे अहंकार, उससे परे समष्टि हिरण्यगर्भ, और उससे परे जो है ना ये परमेश्वर है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में थोड़ा अलग बताया इसका। बालाग्रह शतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, एक बाल को आप रखें उसको हजार टुकड़ा करें फिर सौ टुकड़ा करें, वो जितना सुख में होगा ना उतना सुख में जो है ना ईश्वर है। इसलिए वो इतना सुख में जब मन हो जाता है उस समय जो है ना ये ब्रह्म का दर्शन होता है। इसका मतलब जो माया शक्ति है ना उसके दो बेटे हैं, एक बेटा का नाम आवरण है और एक बेटा का नाम विक्षेप है। आवरण का नाश आप किसके द्वारा करेंगे? सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। लेकिन आवरण से भी बड़ा यदि कोई चीज है तो विक्षेप है। देखो मन की चंचलता, मन में अनेक प्रकार के जो इच्छा है, चंचल दोष है, वो विक्षेप है। इसलिए भगवान विभीषण ने पूछा, भगवान ने जब विभीषण को पूछा कि रावण मरता क्यों नहीं, तो विभीषण ने कहा तेही के उर बसत वैदेही, ये रावण के हृदय में जानकी का निवास है और जहां सीता जी हैं वहां आप हैं। इसलिए सीता जी का ध्यान करते हुए रावण युद्ध करता है, और जब युद्ध करता है तो सीता राम में कोई अंतर नहीं है, एक है। इसलिए प्रभु आप उसको मार नहीं सकते। सीता जी का ध्यान यदि छूट जावे तो मर सकते हैं। तो भगवान राम ने ऐसे अस्त्र चलाया कि रावण का जो मुंड है ना, जब वो खंडन होने लगा तो उसको भयंकर विक्षेप हो गया, और जैसे विक्षेप हो गया तो मन में जो एकाग्रता भाव था ना उसका समाप्ति हो गई। उसी समय जनक नंदिनी माता जी का ध्यान छूट गया और भगवान राम ने बाण के द्वारा रावण का वध किया। ये जो विक्षेप का जो नाश आप किसके द्वारा करेंगे? उपासना के द्वारा। पूजा करना है, सप्तशती का पाठ करना है, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ना है, ये आपकी उपासना है। सुबह उठकर के ओम का चिंतन करना है, एक बहुत बड़ी उपासना है। इसलिए जो उपासना है ना उसके द्वारा विक्षेप का नाश होगा, और नित्य अध्यात्म चिंतन के द्वारा आवरण का भंग होगा। आवरण का भंग जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको यहां पर गीताकार ने मूढ़ा कहा गया, अविवेकी। इस समय उसके आवरण दोष का नाश नहीं हुआ है। मेघाच्छन्न होने से सूर्य का दर्शन नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं होता, परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता? तो ये श्लोक है, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस। जिसकी आशा व्यर्थ है, मोघ माने व्यर्थ, जिसकी कल्पना व्यर्थ है, आशा बहुत करते हैं। आढ्यो भिजन वानास्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, गीता के 16वां अध्याय, गीता जी के 16वां अध्याय में लिखा है, आढ्यो भिजन वानास्मि, मेरे जैसे धनी कोई नहीं है, मेरे जैसे विद्वान कोई नहीं है, मेरे जैसे ज्ञानी कोई नहीं है, सदृशो मया। इसलिए आढ़्यो भिजन मानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया इति अज्ञान विमोहिता। अज्ञान से जो है ना वो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। इसलिए आशा एक है ना, आशा का मतलब आप जब पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और गीताकार ने स्वर्ग की बड़ी निंदा की है, क्षीण पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर आपको मर्तलोक में आएंगे। बोले आप स्वर्ग की निंदा क्यों करते हैं, बोले न तत्र जराया विभेदि, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां कोई रोगी नहीं होता, वहां पर सब लोग जवान रहते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मर्तलोक में आता है। इसलिए एक आशा वो है, कल की कथा स्वामी जी बोल रहे थे ना, अध्यक्ष जी स्वामी विश्वेश्वरानंद जी कल बोल रहे थे कि नचिकेता को जब बताया गया सतायुष पुत्र पुत्रान वृणीश्व कि आप 100 साल तक रहो, 1000 रहो, ईमा रामा सरथा शत्रुजा ये अप्सराओं को भोग करो, तो नचिकेता ने ये मोघासा के ऊपर एक शब्द वहां कहा। बोले धर्मराज जी एक चीज आप बताइए, यम के दो रूप है ना, एक मृत्यु रूप है एक काल रूप है। पापियों के लिए वो मृत्यु रूप है और ज्ञानियों के लिए धर्म रूप है। यम का दो रूप है, यम का जो विषय पुराणों में आया है ना, वो भैंस में उसकी सवारी क्या है, भैंस, और बिल्कुल काला शरीर है यमराज, क्या बताते हैं। और वो मृत्युदंड पास लेकर के आते हैं, तो एक ने कहा ये जो कोर्ट कचहरी में जो जज इत्यादि बैठते हैं ना, वकील है ना, ये साक्षात जमराज जी हैं। इनका जो वाहन है वो काला कोट है, काला कोट। आप खराब मत सोचिए, उसने कहा, एक महात्मा ने अच्छा कहा। अरे आप यमराज को कहां ढूंढने जाते हैं, यही लोग हैं। तो बोले ये कौन है, बोले देखो इनके वाहन है, यमराज का वाहन भैंस है, तो इनका वाहन क्या है, ये काला कोट। ये यमराज जी जो है ना, ये बड़े अद्भुत है, इनकी कृपा है। एक ऐसे यमराज हुआ जो नचिकेता को जो है ना शिष्य बनाया। उस यमराज में कई ऐसे यमराज हुए जो धर्म के रूप में रहे, और अणिमांडव्य ऋषि एक थे, उन्होंने तपस्या की। राजा का घोड़ा चोरी हो गया और चोरों ने अणिमांडव्य ऋषि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा ढूंढने के लिए आया तो अणिमांडव्य के आश्रम में घोड़ा मिला, तो घोड़े को लेकर के ये ऋषि को ले गए और ऋषि को सूली पर लटका दिया वहां पर। जैसे सूली पर वो लटक गए तो उनके जो सूली के जो लोहा होता है ना, वो टूट गया। अणिमांडव्य समाधि में उठे तो देखा कि सूली पर लटके हैं। तुरंत जो है ना यमराज जी को उसने ध्यान किया, यमराज से कहा कि तुमने ये दंड क्यों दिया। यमाचार्य ने कहा महाराज ऐसे है कि आप बचपन में एक कीड़े को एक कील में रख करके सूली में लटकाया और उसका पाप ये है कि आपको दंड मिला। अणिमांडव्य ने कहा मैं तो बच्चा था, बालक था, अज्ञानी था, इसलिए यमराज तुमने अच्छा काम नहीं किया। मेरा ये श्राप है कि द्वापर युग में धर्मराज विदुर बन करके जाओगे। ये जो विदुर है ना, ये धर्मराज है, इसलिए महाभारत काल में विदुर युद्ध नहीं करते और जदुवंश में उद्धव महाराज युद्ध नहीं करते। महाभारत समय में दोनों लोग नहीं थे, विदुर भी नहीं थे और वहां पर उद्धव जी नहीं थे। दोनों जो है ना सत्संग करने के लिए हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गए थे, वहां ये दोनों नहीं थे। इससे सिद्ध होता है कि जो धर्मराज जी हैं उनका जो रूप है ना, एक ऐसे है जो मृत्यु रूप है और एक धर्म रूप है। धर्म के रूप में आप आचार्य हैं, यमराज को आचार्य कहा जाता है, और मृत्यु के रूप में काल है, इसलिए कृष्ण का कहना यह है मोघाशा एक ऐसे आशा है जो व्यर्थ आशा, स्वर्ग जाने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, ये जो आशा है ना, शास्त्र में बताएगा बहुत सी आशा है जो केवल कल्पना में ही रहते हैं, और उनकी आशा अध्यात्म आशा नहीं है, उनकी जो आशा है धर्म पूर्वक नहीं है। पश्येम शरद शतम, जीवेम शरद शतम, श्रृणुयाम शरद शतम, ये जो कहा गया है ना, ये आशा नहीं है, ये आपका धर्म है कि मनुष्य को परमात्मा ने 100 साल की आयु दी है, उस आयु के क्रम से ये विरले पार्ले में एक बहुत बड़ा मनीषी हुआ, नाम था स्वामी महेशानंद गिरी, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने लिखा है कि जिस समय भगवान ने आयु की बंटवारा की तो सभी लोगों को बुलाया, मनुष्य को, गधे को, कुत्ते को 40-40 साल की आयु दी उसने, 40 साल। तो मनुष्य ने कहा कि महाराज बहुत कम हो गया, आयु तो थोड़ा और बढ़ा दो। इतने में जो है ना, थोड़े दिन में एक गधे आए, गधों ने कहा ईटा धोते धोते, बालू लेते लेते, सीमेंट लेते लेते मर गए हम लोग, बड़ा परेशानी में है, आयु थोड़ा कम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो कितना आयु देना चाहते हो, बोले 20 साल कम कर दो आप। तो 20 साल कम कर दिया, तो मनुष्य को पूछा गया आपको आयु चाहिए, बोले ठीक है महाराज। तो 20 साल की आयु हम लोग को दिया ब्रह्मा जी ने, 60 हो गए। उसके बाद जो है ना, ये कुत्ते की पार्टी आया, कुत्तों ने कहा कि भाई 40 साल हो गया, बहुत भयंकर दंड मिल रहा है, तो उसकी आयु जो है ना मनुष्य को दिया। उसके बाद जो है ना, उल्लू नहीं होते रात को जो दिखाई नहीं पड़ता है, पेचा, वो पेचा आए, बोले कि कम करो आप, तो 20 साल की आयु उसकी। तो हम लोग की आयु कितना हुआ? बस इसी को लेकर के वेद ने कहा है पश्चिम शरद शतम, आपकी वास्तविक आयु 40 साल है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे 25 साल तक, फिर सदगृहस्थ में प्रवेश करे, उसके बाद पुत्र संतान हो जाने के बाद 40 साल के बाद जो आयु है ना, वो गधों की आयु है। गधा जैसे ईटा सीमेंट ढोता रहता है, ऐसे आदमी दिन भर जो है ना काम में लगा रहता है, ये गधों की आयु। कुत्ते जो है ना, रात को सोते नहीं, भोगते रहते हैं, ऐसे 60 साल के बाद जो है ना, कोई सुनता है किसी की कथा? कोई नहीं सुनता। अंगगलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जात तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंच त्याशा पिंडम। इसलिए जो है ना, ये जीवन में कुत्ते की आयु, महाराज ने अच्छा कहा, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ये कुत्ते की आयु आ जाता है, 80 साल के बाद एक ऐसे आयु की कल्पना है कि जो पेचा की आयु है। पेचा को सूर्य नारायण दिखाई नहीं पड़ते उल्लू को, और उल्लू को ये ज्ञान है कि संसार में सूर्य नहीं है, रात को दिखाई पड़ता है। तो जब आदमी 80 साल की अवस्था में आता है तो उसको ज्ञान ध्यान पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता, उसको ये भगवत भक्ति सत्संग भजन अच्छा नहीं लगता, उसको केवल गोदरेज की अलमारी ही दिखाई पड़ता है। ये देख, महाराज ने अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि गोदरेज की अलमारी दिखाई पड़ता है, घर दिखाई पड़ता है, बच्चे पोते दिखाई पड़ते हैं। ये आयु आपका जो है ना, ये जो 20 साल की आयु है, वो आयु को शास्त्रों में उल्लू की आयु बताया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं मोघाशा, व्यर्थ आशा, जो आशा है कि मैं 100 वर्ष रहूंगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा। इसलिए नचिकेता ने कहा इंद्रियाणाम जरयन्ति तेज, इंद्रिया की शक्ति क्षीण हो जाती है विषय भोग में, ऐसे जो आशा मोघाशा मोघ कर्माणो, जिसका जो कर्म होता है ना केवल राजसी होता है, तमोगुणी होता है। जो भी वो कर्म करता है सकाम कर्म करता है। कर्म का अर्थ होता है मोघ माने व्यर्थ, ऐसे कर्म है जो सकाम कर्म है। मोघ कर्माण, आपका जो भी कर्म है भगवत अर्पण बुद्धि से आप कर्म नहीं करते, फल की इच्छा को लेकर के जो भी कर्म करते हैं, ऐसा जो कर्म होता है अग्निहोत्री, जैसे अग्नि में हवन किया, पूजा की, किसी को दान दिया, जो भी कर्म करता है ना वो इच्छा को लेकर के करता है। ऐसे जो कर्म होते हैं जो स्वर्ग लोक में जाने के लिए, विभिन्न रूप में जाने के लिए, मैंने एक महाराज से कथा सुनी थी कि एक देवता की साधना एक गृहस्थ ने किया और उसके सामने इंद्र भगवान प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि बोलो क्या वरदान चाहिए। तो उस साधक ने कहा कि भगवान ऐसे है, आप कृपा करो एक वरदान दो और वरदान यही होगा कि आप मेरे अधीन में रहो, मेरे बस में रहो, मैं जो बोलूं वो हो। तो इंद्र भगवान ने पूछा कि एक दो विषय में पूछूं और आप बोलो। तो उस भक्त ने कहा कि बोलिए महाराज, तुम्हारे नौकर तुम्हारे बस में है कि नहीं है। तो उसने कहा ये मेरे बस में नहीं है नौकर। बोले आपके घर में जो कुत्ता है वो बस में है कि नहीं है। बोले वो भी बस में नहीं है। पड़ोसी बस में है कि नहीं है। बोले वो भी बस में नहीं है। फिर इंद्र भगवान ने पूछा कि तुम्हारी देवी तुम्हारे बस में है कि नहीं है। बोले तो वो बिल्कुल है ही नहीं, उसने कहा। तो देवता ने कहा कि तुम्हारे बस में नौकर नहीं है, झाड़ू लगाने वाला नहीं है, कुत्ता नहीं है, पत्नी नहीं है, परिवार नहीं है, बालक नहीं है, बच्चे नहीं है। तो ये देवता आपके बस में कैसे होगा? जिसके बस में कोई नहीं है, उसके इंद्रियां उसके बस में नहीं है। तो जिसके इंद्रियां जिसके बस में नहीं है वो मन के अधीनस्थ है, उसका कर्म क्या होता है? मोघ कर्माण। उसका कर्म जो है ना सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां जिसके बस में नहीं होगा, जिसका मन बस में नहीं होगा, ऐसे कर्म करता है जो सात्विक कर्म से रहित है। रजोगुण कर्म है और तमोगुण कर्म है, इसलिए वो कर्म को यहां गीता जी में जो रजोगुण और तमोगुण कर्म होते हैं ना उसको कहते हैं मोघ कर्माण। ऐसे कर्म वो करता है जो कर्म व्यर्थ है। वो जो फल होता है ना वो अल्पकालिक होता है। आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इसलिए तो बताया ना भाई, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो आप कर्म करते हैं सब ब्रह्म है, जो पूजा पाठ करते हैं वो सब ब्रह्म है, जो भी। इसलिए इस बात को देखिए, आज तक हम लोग कैलाश में स्वामी विद्यानंद महाराज जी को भूलते नहीं है। क्यों नहीं भूलते? वो एक चीज बोलते थे, आप यदि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो आपके शरीर में एक चोटी होना चाहिए, एक जनेऊ होना चाहिए। आपको जो है ना जनेऊ पहनने का अधिकारी आप हैं। यज्ञों पवित्र होना चाहिए, एक चोटी होना चाहिए। अमृतसर से कोई शर्मा परिवार आया और उसको स्वामी जी ने पूछा कि तुम कौन जात के हो? तो बोले मैं शर्मा हूं। बोले जनेऊ पहनते हो कि नहीं पहनते हो? बोले महाराज डॉक्टर के काम करते हैं तो हम प्रोफेसर हैं और डॉक्टर में बड़ा सर्जिकल विभाग में है, तो जनेऊ को हमने निकाल दिया है। उसने कहा जनेऊ नहीं पहनते। और जनेऊ आप पहने हैं और अपने घर की जितने ताला का चाबी है उसमें लगाए हैं, तो ये बड़ा पाप है। जनेऊ पहन करके घर की चाबी लगाना, गोदरेज अलमारी की चाबी उसमें रखना, और पाप है। ब्राह्मण समुदाय में होता है, अच्छा नहीं है वो। इसलिए यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापते यत सहजम पुरस्तात। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में इस बात को उठाया कि ऐसे आपका कर्म है जो मोघ कर्मण, अग्नि में आहुति देते हैं तो उचित है, लेकिन राख में यदि आहुति देंगे हैं तो अनुचित है। तो कृष्ण यहां ये कहना जा रहे हैं कि जो भी आप कर्म करते हैं भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं है। ईश्वर अर्पण के द्वारा जो कर्म होगा ना, वो तो आपका कर्म शास्त्रीय है। अभी मैं हिमाचल में चतुर्मास करने गया था तो वो लोगों ने कहा कि महाराज यहां जो है ना पंच शक्ति है, पांच महाशक्ति पीठ है, चिंतपूर्णी है, नैना जी है, ज्वाला है, कांगड़ा है, तो बोले कि चातुर्मास में जो है ना विवाह होता है, वहां जहां चातुर्मास से होता है गुरु पूर्णिमा के बाद। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि भगवान जब सोते हैं तो विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों ने सोचा कि जब सुविधा हो विवाह कर ही दो। सभी जगह यही हो रहा है, अहमदाबाद में भी होता है, कलकत्ता में भी होता है कि जब भी फुर्सत हो चातुर्मास मानने की जरूरत नहीं है। रात्रो दधि न भुंजियात, रात में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप विवाह में गए हैं और दही बड़ा बढ़िया बना है तो कोई देखता है वहां? जो पढ़ता है वो भी नहीं देखता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि मोघ कर्माणो, आपका कर्म व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? सीधे सीधे आप गीता जी में आइए कि भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद लेवे। भगवान को बिना भोग लगाए जो प्रसाद खाता है यान्ति अघ, वो पाप को खाता है। जो देवता को दिए बिना जो भोजन करता है वो पाप को ही लेता है। ये देवता को देने का क्या है? सन्यासी समाज में 15 अध्याय गीता पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती ओम सहनावतु सहनु भुनक्तु ये वेदमंत्र का पाठ करते हैं, चिन्मय मिशन वाले ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ये बोलते हैं। और जो शंकर को मानते हैं वो लोग कहते हैं अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती ये कह करके भोजन करते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता तो ओम कह दें, यदि ओम ही कह देंगे ना तो वो जो भोजन है ना वो प्रसाद है, वो भोग लग गया। मंदिर नहीं है तब भी भोग लग गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो भी आप कर्म करते हैं ईश्वर अर्पण के बिना जो भी कर्म होगा ना वो मोघ कर्माण, वो कर्म व्यर्थ है। मोघ ज्ञान विचेतस, जिसका ज्ञान ही व्यर्थ है। मोघ माने व्यर्थ, आपको बहुत से आपके पास ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, वो जो ज्ञान है ना वो मोघक ज्ञान। ऐसे ज्ञान को जो है ना मोघक ज्ञान बताया है। सब विद्या को आपने पढ़ा, या विद्या सा विमुक्त है, बहुत से विद्या आपने पढ़ी, लेकिन सबको पढ़ने के बावजूद भी यदि आत्मज्ञान नहीं जाना, अपने को नहीं जाना, तो कहते हैं कि इससे बड़ा अपराध संसार में नहीं है। इसलिए मोघक ज्ञान, जितने भी ज्ञान है ना वो सबका व्यर्थ है। इसके सीधे सीधे अर्थ है कि सत्वगुणी जो ज्ञान होगा ना वो ईश्वर स्वीकार करते हैं। और श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। एक हमारे ग्रंथों में सिद्धांत लेश संग्रह ग्रंथ है, सिद्धांत लेश, वो आचार्य कक्षा में पढ़ाते हैं। उसके रचयिता जो है ना अप्य दीक्षित पंडित है, अप्य दीक्षित। एक बार उज्जैन के महाकाल में दर्शन करने के लिए गए तो ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी हंसी की, बड़ी बदनाम की, बड़ी अपमान किया। बोले कि यदि तुम शिव भक्त हो तो एक काम करो। बोले क्या है? रात में हम घास रख देते हैं और ये नंदी बैल घास खा करके रात में यदि गोबर कर देगा तो समझ लेंगे कि आप भक्त हो। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, घास की टोकरी रखे। रात में 11 बजे मंदिर बंद हो गया। सुबह महाकाल की भस्म आरती होने की तैयारी में है और उसी समय अप्य दीक्षित सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। मैं कुछ नहीं जानता, आपके चरणारविंद की वंदना करता हूं। मंदिर जैसे खोला तो नंदी बैल के पीछे जो है ना 2 किलो गोबर पड़ा हुआ, वो जो घास रखा था, तो लोगों को लगा कि ये क्या है। तो वास्तविक में सिद्ध हुआ कि शंकर भगवान है, ये नंदी जी है। इसलिए कभी कभी यहां ऐसे लगता है कि ये जो कथा हम लोग बोलते हैं ये महाराज ही सुनते हैं। मैं यहां अनुमान लगाया कि स्वामी जी का जो चिन्मय स्वरूप है, महाराज जी का जो चिदानंद स्वरूप है, ये कथा सुनता है। ये जो मूर्तियां आपके घर में है ना, वो आपको देखते हैं, लेकिन आपके जो भाव है, आपके जो प्रेम है, उससे जाना चाहिए। भाव में तन्मय होना चाहिए। विनय प्रेम वश भई भवानी खसीमाल मूर्ति मुसुकानी। विनय प्रेम के चलते जो है ना, ऐसे भाव होना चाहिए कि आपका जैसे हृदय में उद्गार होगा, भाव होगा, वो बैठा हुआ जो चेतन शक्ति है ना, अपने आप द्रवीभूत हो जाएगा। इसलिए वेदांत का सिद्धांत, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। इसलिए भगवान कहते हैं मोहक ज्ञान, जो ज्ञान आपकी है वो व्यर्थ है। क्यों भाई? बोले आपने अग्निहोत्र किया, पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, लेकिन आपने जो है ना ईश्वर अर्पण के द्वारा भगवान के प्रीति अर्थ कर्म नहीं किया। जो भी ज्ञान है वो ज्ञान व्यर्थ है। रावण ने शंकर से कहा कि देखो शंकर जी, आप यहां आए हैं, लंका आप लोग गए हैं? नहीं गए ना। लंका में जो महादेव है ना, वो रावणेश्वर महादेव नहीं है। श्रीलंका में जो शिव है उसको वहां रावणेश्वर महादेव नहीं बोलते। लंका में जो महादेव है उस महादेव का नाम है शंकरी महादेव। शंकरी, शंकर भगवान है। तो शंकर जी के पास जब रावण गया ना, तो शंकर जी ने पूछा कि आप क्यों आए, क्या बात है, सब तो चले गए, कुंभकर्ण गया, इंद्रजीत गया। रावण ने कहा कि महादेव जी, दोष मेरा नहीं है, सब दोष तुम्हारा है। उसने कहा क्या हो गया? तुमने यदि मुझे शक्तिदाता नहीं बनाया होता ना, तो ये उत्पात मैं नहीं करता। तुमने सब शक्ति मुझे दिया और इतना बड़ा शक्ति तुम्हें दे दिया कि सारा अधर्म मैंने किया, इसलिए अच्छा है कि सारा दोष जो है ना तुम्हारा है। तो शिव जी ने कहा, देखो रावण जी, लंका को किसने जलाया? शंकर ने। और वरदान किसने दिया? शंकर ने। और राम बनकर के कौन आया? शंकर ने। इसलिए सब कुछ शिव है, शिव को छोड़ करके और कोई नहीं है। ऐसा जो ज्ञान, वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, ईश्वर को छोड़ करके कोई नहीं है। ऐसा जो ज्ञान होता है वो वास्तविक है, लेकिन जो रजोगुणी और तमोगुणी वाले होते हैं, सकामी होते हैं, वो मोघ ज्ञान विचेतस, उनका जो चित्त वृत्ति है ना, वो मूढ़ हो जाती है। राक्षसी मासुरीम चैव, वो आसुरी भाव को प्राप्त करते हैं। राक्षसी शब्द भी वही है और आसुरी शब्द भी वही है। असुसु विषयेषु इंद्रियेषु जे रमन्ते ते असुरा, ये जो इंद्रियों के भोग में रमण करते हैं उनको कहते हैं असुर। असु का दो अर्थ होता है, असु का अर्थ होता है प्राण और असु का अर्थ होता है इंद्रियां। जो इंद्रियों में रमण करते हैं ना, उसको बोलते हैं असुर। और इसके ऊपर यदि आप प्रमाण देखेंगे तो गीता जी के 4th श्लोक 16वां अध्याय का, दंभो दर्पो अतिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद माचुरी। वहां पर 16वां अध्याय के 4वां नंबर श्लोक है सर। तो वहां पर कहते हैं कि जो दम्भ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, ये जो भाव है ये आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है। इसलिए कभी कभी रामचरितमानस में ये शब्द आता है कि हनुमान जी से लोगों ने पूछा कि आप मच्छर रूप धारण किया, लंका में गए, रात में गए, आप जो है ना दूसरा रूप धारण कर लेते। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं मच्छरों को देखा और मच्छर में बड़ा सद्गुण मिला। बोले वो मच्छर में क्या सद्गुण है कि मच्छर मच्छर को नहीं काटता। उसने कहा मच्छर मच्छर को नहीं काटता, आदमी आदमी को काटता है, पशु पशु को काटता है, लेकिन मच्छर जो है ना मच्छर को नहीं काटते। इसलिए मशक रूप धरी कपित गए हो। तो मैंने मच्छर बना और देखा वहां, किसको देखा, आसुरी को देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गय दशानन मंदिर माही। सब तो मंदिर है, मंदिर में देवता होता है, लेकिन देवता नहीं थे, असुर लोग थे। इसका मतलब आसुरी वही होता है जिसके जीवन में पूर्ण अहंकार होता है। अहंकार जिसके में हो, चाहे धन का, चाहे बल का, चाहे विद्या का, चाहे बाहु का, चाहे ज्ञान का, उसको यहां पर आसुरी भाव लिया गया है। ऐसा जो प्रकृति होता है मोहिनीम श्रिता, वो मोहित होते हैं और उनका बार बार जन्म होता है। इसलिए ये श्लोक जो है ना, अवजानंति मा मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, ये जो 11वां श्लोक है ना, वो जो मूढ़ शब्द आया है, वो मूढ़ कौन है, तो मूढ़ का लक्षण ये 12वां श्लोक में है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चेव प्रकृति मोहिनीम श्रिता, यहां पर बताया है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी महाराज जी जो साक्षात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे, वो हमारे कैलाश आश्रम के सदगुरु हैं, आप सभी के सदगुरु हैं। और महाराज जी तो दिव्य विभूति थे, वृंदावन के स्वामी ओंकारानंद जी कहते थे सबके सामने, यदि प्रेमपुरी नहीं होते तो स्वामी अखंडानंद जी नहीं आते, और अखंडानंद और प्रेमपुरी दोनों नहीं होते तो बंबई में सत्संग नहीं होता, और भरी सभा में बोलते थे। इसलिए जो है ना ये लोग गए, क्योंकि अखंडानंद महाराज सुखदेव के अवतार, और प्रेमपुरी महाराज जी के आप जब देखते हैं रुद्राक्ष माला, और यहां गौरी शंकर का दाना जब आप देखते हैं, और उनका जो चंदन लगाते हैं ना, वो सूर्य बिंदु है स्वामी जी का, सूर्य बिंदु, जैसे कर्ण लगाता था, कर्ण सूर्य का रूप था, ऐसे हमारे प्रातस्मरणीय महाराज जी हैं। पहली बार आना हुआ, स्वामी मोहनानंद जी ने कहा कि आपको जाना होगा, बड़ी कृपा रही, हमारे गिरीश भाई ने कथा का समय भी दिया, आप सभी झुंझुनवाला माता जी और सब आप लोग हैं, बहुत अच्छा है। कभी भी वाराणसी आओ तो विश्वनाथ दर्शन करने के लिए पधारें, हम लोग के आश्रम में आए हैं, आपका आश्रम है, और ये जो आनंद कानन प्रेस है ना, वहां पर हम लोग का आश्रम है, पास में है, और बहुत अच्छा है, आप सबका बड़ा अभाव है। यहां हमको स्टेज में लगा कि हम बैठकर बोलें क्या, जो 50-50 साल से कथा सुन रहा है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विदुषी, तो उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे साक्षात जो है ना, यही महाराज जो है ना जीभा के अग्र में बैठ करके कुछ बोल रहे हैं। कभी कभी तो विस्मरण हो जाता है, इसलिए मुकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम, ऐसे शास्त्रों में बताया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आभारी। और कल जो कार्यक्रम है जो हुआ हमारे स्वामी अवधेशानंद से, तो हमारा तो बहुत बच्चा जैसे भाव है, वो रहते हैं मैं रहता हूं तो अलग एक भाव होता है। मैंने उनको पूछा, अरे आपको पास इतना ज्ञान ध्यान कहां से आया, तो बोलते हैं कि स्वामी जी ऐसे है ना, मुझे ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है, देवी भागवत जो दुर्गा सप्तशती है ना रोज पाठ करते हैं, अभी ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे, अभी मिलते नहीं है, और श्री विद्या का जो है ना बड़ी उपासना करते हैं, जिनके चलते इनको इतनी शक्ति आ गई। ये पहले पहले जब मंडलेश्वर थे ना, ज्यादा कुछ नहीं था, वो अलग था, भगवान की कृपा रही, इसलिए बहुत अच्छा। हमारे प्रकाश मेहता जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव तुम्हारी जय, जय हो गुरुदेव, हो महादेव तुम्हारी जय, जय हो महादेव, हो विश्वनाथ तुम्हारी जय, जय हो विश्वनाथ, जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय, जय हो गुरुदेव तुम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
नारायण 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 नारायण। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसे प्रकांड विद्वान हमारे बीच में आए और इनकी अद्भुत वाणी का लाभ हमें मिला। गीता के एक एक श्लोक के विषय में स्वामी जी इतनी गहराई में गए, रामायण तरह तरह के शास्त्रों से उन्होंने ऐसी संगत बिठाई कि एक एक श्लोक हमारे समझ में आया। अब तक उन्होंने 12 श्लोक किए, लेकिन बहुत गहराई से श्लोकों का अर्थ, उसका भावार्थ और हमारे जीवन में कैसे चरितार्थ हूं स्वामी जी ने समझाया। कल स्वामी अविधाचरण जी ने स्वामी जी के जो बारे में बात कही, सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। जो उन्होंने इनकी प्रशंसा की है, इनके बारे में जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, सुनकर लगा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं ताकि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए हैं और हमें इनकी वाणी का लाभ मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं किसी तरह से आपकी वाणी का लाभ हमें मिलता रहे, और हमें बहुत प्रसन्नता है, हम आपके बहुत आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।